چند ابھی اپن نے یہاں سنے ہیں. پورا چلنے میں تو قریب 17 منٹ کا ہے. اپن نے جو یہ 5 چند ابھی یہاں بولے ہیں ان کے سندرب میں اپن چرچا کرتے ہیں, پھر آگے بڑھیں گے. بہت ہی سندر رچنا ہے. واسطو میں اس کا نام اپورو اوسر ہے, اور میں کہتا ہوں کہ کیسا اپورو اوسر ہوگا جب اس کی رچنا لکھی ہوئی ہوگی. یہ سادھارن نہیں ہے, یہ اتنے گمبھیر بھاؤ بھرے ہیں. ان کے جیون میں اپورو اوسر آیا تھا اور ہمارے جیون میں وہ اپورو اوسر کب آئے گا؟ گیانیوں کے جیون میں سدبھاگیہ جاگرت ہوتا ہے, اور گیانیوں کی شرن لینے والے جیووں کا بھی سدبھاگیہ جاگرت ہونے کا کال آ جاتا ہے. ایسا اوسر کب آئے گا؟ دھنیہ دیوس, دھنیہ اوسر, دھنیہ گھڑی, دھنیہ سمے. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کہ جب میں بائی انتر نرگرنت ہو جاؤں گا. اور پھر اس نرگرنت ہونے کی ودھی بھی بتلائی ہے کہ کس طرح سے نرگرنت ہوا جاتا ہے. دیکھیے بھاگیشالی کون؟ دنیا میں بہت لوگ اپنے آپ کو بھاگیشالی سمجھتے ہیں. بھرا پورا پریوار ہے تو ہم بھاگیشالی ہیں, بچے کہنا مانتے ہیں تو ہم بھاگیشالی ہیں. نہ معلوم کہاں کہاں ہم نے بھاگیشالی پن کی کلپنا کر رکھی ہے. کتنے پرکار سے ہم نے وچار کر رکھا ہے کہ اس طرح سے ہم بھاگیشالی ہوں گے, اس طرح سے ہم بھاگیشالی ہوں گے, اچھی جاب مل جائے, بہت پیسہ ہو. یہ کتنا بھاگیشالی ہے دیکھو تو صحیح. آپ ایسا لگتا ہے ہمارے بچے ایگزام میں یعنی ٹاپ کیا ہو تو ہمیں لگتا ہے میں کتنا بھاگیشالی ہوں, کتنے اچھے بچے ملے ہیں مجھے, کتنا اچھا پریوار ملا ہے مجھے. ارے بھائی, لیکن تیرا یہ جو وچار ہے یہ بھاگیشالی پن کا سوچک نہیں ہے, یہ تو پورو میں کیے گئے کرم کا ادے ہے. نوین کیا کام کیا, ابھی کیا کیا, یہ جنوانی سننے کا اوسر ملے یہ بھاگیشالی پن ہے. بھلی ہونہار ہوتی ہے انہیں ایسا وچار آتا ہے کہ میں جنوانی کی چرچا سنوں, کیونکہ وچار ماتر آنا بھی بہت درلبھ ہے. آپ کئی ورسوں تک لوگوں کو یہ بات کہتے رہے ہیں کہ سنو, سننے کے لیے آؤ, ان کو سی ڈی دیتے رہو, ان کو بکس دیتے رہو, لیکن پھر بھی جن کی ہونہار بھلی نہیں ہے وہ سی ڈی لیں گے اور لے جا کے تاک میں کر دیں گے, نہیں سنیں گے. آپ کہانیوں کی کتاب دو, یہ تو پڑھنا, اس میں تو اچھا لگے گا آپ کو, لے جائیں گے اور لے جا کر کے گھر دیں گے اسے, اور تھوڑے دن بعد میں آپ کو واپس لوٹا دیں گے, اور آپ پوچھو گے پڑھی کیا, کہ ہاں ہاں پڑھ لی, کہ کیا کیا پڑھا اس میں سے, یہ بتا نہیں سکتے. دیکھو آپ ہماری کیسی استھتی ہے, کس کو سننے کو ملے یہ, جس کا بھاگیہ جاگرت ہو, یہ اس کے ہی کان میں پڑتی ہے. گرودیو تو ایسا کہتے تھے کہ بھائی جوتوں میں بیٹھ کر کے بھی یدی یہ بات سننے کو ملے تو سمجھنا مہا بھاگیہ ہے. اتینت درلبھتا سے جوتے پہ بیٹھ کر کے, بھیڑ لگی ہو, بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملے, اور ایسی جگہ پر بیٹھنا پڑے جہاں بیٹھنے کے لیے آسن نہ ہو, جہاں گدا نہ ہو, جہاں دری نہ ہو, چٹائی نہ ہو, کرسی آدھی ہونے کی تو بات بہت دور کی ہے, اور جہاں جوتے کھلے ہوئے ہو لوگوں کے, ایسے جوتوں کے اوپر بیٹھ کر کے بھی یہ سننے کا اوسر ملے تو کہنا ہونہار بہت بلی ہے. کہ کیوں اپورو اوسر کہہ رہے ہیں اس کو, کیوں بھاگیشالی کہہ رہے ہیں, کیوں اس کی مہیما گا رہے ہیں؟ کیونکہ بھیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جگت میں سمپتی ملی ہے وہ بھاگیہ ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جسے مکتی سامراجیہ ملے گا وہ بھاگیشالی ہے, جس کو ٹیمپریری سکھ ملے وہ بھاگیشالی ہے, جس کو پرماننٹ ملے وہ بھاگیشالی, پرماننٹ ملے وہ بھاگیشالی ہے. صحیح, ہمیں پتا ہے جو ویکتی یہاں سننے کے لیے آیا ہے وہ ویکتی بہت پنیہ کر کے آیا ہے, اس لیے بھاگیشالی ہے. اور مہان بھاگیہ تو تب جاگرت ہوگا جب اس بات کو سن کر وہ اپنے جیون میں اتار لے گا, اور ہمیں پتا ہے سنتے سنتے کبھی تو جیون میں اترے گا ہی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف سنے ہی سنے, روزانہ سنے گا, بار بار سنے گا تو بات اندر میں بھی جاتی ہی ہے, اندر میں اترتی ہی ہے. ہاں تھوڑا ٹائم ضرور لگ سکتا ہے, کسی کو تھوڑا کم ٹائم لگے, کسی کو زیادہ لگے, یہ تو سنسکار ہوتے ہیں نا, پورو کے سنسکار بھی ہیں, کیا کریں. पूर्व के संस्कार और नमालूम कैसी होनहार होनी है आगे, आगे कौन सी गति में जाना है, ये सब निर्भर करता है उसके ऊपर। यहाँ कह रहे एक बार अपने भाग्य के बारे में विचार करो, अपने भविष्य के बारे में विचार करो। कि साहब हम भविष्य के बारे में तो सोचते हैं कि नहीं, दो पांच साल का भविष्य नहीं, अपने आगे आने वाले अनंत काल के भविष्य के बारे में विचार करो। ये वो विधि बतलाई है जिस विधि पर चलकर परमानेंट पूर्ण सुख की प्राप्ति की जा सकती है। सादी अनंत काल के लिए जीव पूर्ण सुखी हो सकता है। कब आएगा ऐसा अवसर? मैं तो भावना भाता हूँ ऐसा। कब आएगा ऐसा अवसर जब चित्त में शांति होगी? कब आएगा ऐसा अवसर जब घर में शांति होगी? कब आएगा ऐसा अवसर जब सब मिलजुल करके रहेंगे? कब आएगा ऐसा अवसर जब आत्मा के अतिन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होगा? कब आएगा ये विचार कर रहे हैं हम। देखिए जो व्यक्ति ऐसा विचार करता है, जो व्यक्ति ऐसे अवसर को प्राप्त करने की भावना भाता है, उसके जीवन में अवश्य ऐसा अवसर आता है। किसी भी कार्य को करने के पहले, किसी भी कार्य को होने के पहले वो कार्य भावना में आता है, वो बात विचारों में आती है। जब विचारों में आती है तो फिर कार्य रूप से दिखाई देती है। माने काम होने के पहले नियम से वो कार्य विचारों में आएगा, भावना में आएगा, चिंतन में आएगा। तो ये जो बात कह रहे हैं यहाँ, ये जो कुछ छंदों में श्रीमद् जी ने जो ये रचना लिख दी है, ये वास्तव में उनका जीवन तो इतना धन्य हो ही गया था, अनेकों वर्षों की साधना का परिणाम है। भव्य जीव अल्प काल में मुक्ति प्राप्त करने वाले, वाले क्या मिल गया था उनको, जो निधि मिल गई, अब उस निधि को प्राप्त करके वो ऐसी भावना भाते कि कब और कदम आगे बढ़े, कब निर्ग्रंथ अवस्था की प्राप्ति होगी, कब संयम अंगीकार करें हम। देखिए अकेले बाह्य निर्ग्रंथ बने की बात नहीं है, बाहर से त्याग की भावना नहीं भाते हैं। अंतरंग त्याग हो, और अंतरंग त्याग कहलाता है राग द्वेष का त्याग, अंतरंग त्याग कहलाता है कषायों का त्याग, अंतरंग त्याग कहलाता है विभाव का त्याग। हमारे हृदय से जो कटुता है वो निकल जाए, हृदय से कलुषता निकल जाए, मायाचारी का परिणाम निकल जाए, छल का भाव निकल जाए, ऐसी भावना भाता हूँ मैं। क्योंकि भाई मेरी कषायें किसी और के लिए नहीं है, मेरी कषायें मेरे ही लिए दुखकारी है, किसी और को कष्ट नहीं देगी। कौन दुखी होता है उन कषायों से? मैं स्वयं दुखी होता हूँ। क्रोध का परिणाम हो चाहे मान का परिणाम हो, मायाचारी हो चाहे लोभ का परिणाम हो, प्रत्येक परिणाम इस जीव को स्वयं दुखी करने वाला है, स्वयं को ही दुखी करने वाला है। तो जो उपाय यहाँ बतलाते हैं ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये उपाय तो अपने ही सुख के लिए है। सबसे पहले तो ऐसा लगे जनवाणी सुनते समय कि अहो ये जो बातें कही जा रही है ये बातें किसी और के लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए है, कि मुझे ही लक्ष्य में रखकर के मानो श्रीमद् जी ने ये रचना रखी हो। कोई भी रचना, उनके कोई भी पद पढ़िए आप, कोई भी उनके काव्य हो, कितने भी कवित्व हो, जो भी उनके पत्रांक हैं, सब हो, वे सब किसको लक्ष्य में रख करके लिखे हैं? कि जिसके लिए पत्र लिखे थे कि नहीं नहीं मेरे लिए लिखे हैं, जो पढ़े उसके लिए, जो अनुभव करे उसके लिए। एक एक शब्द कितना मार्मिक है। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, गुजराती भी रख सकते हैं। क्या कहा है? अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, कब आएगा ऐसा अवसर, कब आएगा वो दिन, वो समय कब आएगा? देखो शांति की चाहना रखने वाले, जिनको शांति की भावनाएं हैं, अंदर से तड़प लगती है, अंदर से भावना होती है, ये आकुलता बर्दाश्त नहीं होती, ये बेचैनी पसंद नहीं आती, टेंशन दिमाग भारी रहता है, कषायें रहती है, आकुलता रहती है, घबराहट रहती है, फिर कहना चाहते कब आएगा ऐसा अवसर। आप पूछो भगवान महावीर स्वामी के जीवन में, जब ये गृहस्थी में रहते थे, 30 वर्ष की युवा अवस्था के अंदर दीक्षा ले लेना साधारण काम नहीं। कैसे उन्होंने दीक्षा ले ली, कैसे ज्ञानी घर छोड़ करके निकल जाते हैं? घर में है, राजपाट है, परिवार है, संपत्ति में कोई कमी नहीं है। शांतिनाथ स्वामी 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती थे, क्या कमी थी बतलाओ? थी कुछ तो कमी, और वो कमी क्या थी? कि संतुष्टि नहीं थी, चैन नहीं था, बेचैनी थी अंदर में। बाहर में सब कुछ है, नौकर चाकर है, राजपाट है, महल मकान है, गाड़ी बंगला सब कुछ, विमान है, देव लोग सेवा करने वाले हैं, भोजन की व्यवस्थाएं स्वर्ग से होती है, कपड़े रत्न जड़ित स्वर्ग से आते हैं, देव गति से आते हैं, फिर भी लेकिन अंदर में बेचैनी है। वो नहीं मिला है जिसकी हमें चाह है, उसकी प्राप्ति नहीं हुई है जो मैं चाहता हूँ। ये जीवन किसी और काम के लिए मिला है, ये जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है। मेरा जन्म यहाँ ये भोगों के लिए नहीं है, मेरा जन्म कषायों के लिए नहीं है। अरे अनंत जन्म में अनंत बार बहुत बहुत कषाय करते हुए काल बीता है, अब ऐसे काल नहीं बिताए, अब ऐसा काल नहीं बीतेगा हमारा। अब वो अवसर आ गया है आत्म कल्याण करने का। सोचिए बड़े भाग्य से तो ऐसे परिवार मिलते हैं जहाँ ऐसे सागर में लोग बैठ करके चर्चा करें, मतलब भाई ऐसे परिवार नहीं है। इंडिया में जाकर के देखें तो बहुत दुर्लभता दिखती है। एक तो हमारा परिवार दिखता है क्या, और एक आपका परिवार दिखता है। इतने अच्छे परिवार कहाँ मिलेंगे बतलाओ, सब सागर में ही है, सब एक ही दिशा में जाने वाले है। देखिए हम जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हूँ, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति बगल में बैठा है उससे यदि हम पूछें कि आप कहाँ जा रहे हो भाई साहब, और वो ऐसा जवाब दे जो जहाँ हम जा रहे हैं वही जगह यदि वो भी बतलाए, तो हमारे मन में थोड़ी प्रसन्नता होती है। अरे आप भी वही जा रहे हो, मैं भी वही जा रहा हूँ, तुरंत अपने मुख से निकलता है, अरे मैं भी तो वही जा रहा हूँ, वहाँ भी कहाँ जा रहे हो आप, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। तो कितना पूरा टाइम कैसे आपस में मेल मिलाप करके साथ में व्यतीत होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, रमेश भाई कहाँ जाना है आपको, मोक्ष में जाना है, हमारी मंजिल तो वो है। अब उस मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ता क्या है, यहाँ से तो डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो बीच में जितना भी रास्ता होगा यहाँ से जहाँ कहीं पर भी जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से कुछ काल के लिए हमें त्रियंचादी गतियों में जाना पड़े, देव गति में जाना पड़े, क्या फर्क पड़ता है, फाइनल डेस्टिनेशन तो हमारा वही है ना, पहुँचना तो हमारे को मुक्ति में है ना। आपको मुक्ति में जाना है और मुझे कहाँ जाना है मालूम है आपको, मुझे भी तो वही जाना है, अपना साथ अच्छा रहेगा। जिनका लंबा सफर हो और जिनके साथ में हमें लंबा सफर बिताना हो, उनके साथ में प्रेम व्यवहार से न रहा जाए तो सफर नहीं कटता। मैं जिंदगी के सफर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सर्वोत्कृष्ट यदि दुनिया में किसी से संबंध हो सकता है तो साधर्मी से संबंध हो सकता है, और इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि हमारे परिवार वाले साधर्मी हो जाए। धर्म यहाँ जीवन में प्रवेश करे वहाँ अपने आप साधर्मी बना जाता है। अरे धर्म ही एकमात्र शरणभूत है, तीन लोक तीन काल में धर्म के अलावा अन्य कोई शरण नहीं है, कौन शरण देगा, कौन सहारा है हमारे लिए, कौन बचाने में समर्थ है। धर्म माने अंतरंग परिणाम, धर्म माने अंदर की बीच रास्ता, धर्म माने अंतरंग से निर्ग्रंथ पना, उसका नाम वास्तविक धर्म है, वो सच्चा धर्म है। कब ऐसा धर्म जीवन में प्रकट होगा कि सहजता होगी, शांति होगी, निर्विकल्पता होगी, निश्चिंतता होगी, जीवन अपार शांतिमय हो जाएगा। हम भावना बातें हैं, वो दिन कब आएगा, जो अपन कितना सोचते रहते हैं, वो दिन कब आएगा कि जी बच्चा समझदार हो जाएगा, वो दिन कब आएगा कि इसमें थोड़ी सी समझ आएगी, पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देते हैं हम क्या हस्बैंड वाइफ के बारे में, वाइफ हस्बैंड के बारे में, पता नहीं इनको तो समझ ही नहीं है, भगवान कब इनमें सदबुद्धि आएगी ये कब समझेंगे, इनमें कब अकल आएगी, कब बोलना, कैसे बोलना, कितना सोचते हैं हम एक दूसरे के बारे में, लेकिन मेरे में कब समझ आएगी ये कोई नहीं विचार करता। सब दूसरों के बारे में विचार करते हैं, मैं विचार करूंगा तो उनके बारे में विचार करूंगा, वो विचार करेंगे तो मेरे बारे में करेंगे, अपने आप के बारे में विचार करने का अवसर ही नहीं है। कभी अपने मोबाइल से अपने नंबर पर मिला करके देखा है, अपने मोबाइल से अपना नंबर डायल करो, अंगेश ट्यून मिलेगी आपको गारंटी से, गारंटी से अंगेश ट्यून मिलेगी, पर से मिलने की सारी लाइनें खुली हैं और अपने से मिलने की सब लाइनें व्यस्त हैं। अपने आप को मिला करके देख, व्यस्त हैं। अपने आप से मिलने की फुर्सत ही नहीं है, अपने आप को जानने का अवसर ही नहीं है, अपने आप को जानना चाहता ही नहीं है, अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहता है। सब दूसरों को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को कोई नहीं सुधारना चाहता। और सब यदि अपने आप को सुधारे तो सब सुधर जाए अपने आप। ये श्रीमद जी किसी और को सुधारने के लिए नहीं कह रहे। प्रत्येक वाक्य के अंदर ऐसा झलकता है कि ये जो संबोधन किया गया है, ये संबोधन किसी और के लिए नहीं है, ये संबोधन उनका अपने आप के लिए है। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, महेंद्र भाई का इसलिए लिख रहे हैं। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा मेरा मेरा। वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जो सम्यक दृष्टि है, वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जो भेद विज्ञानी है, जिन्हें आत्मा का अनुभव हो गया है, वे भी संतुष्ट नहीं है। वे भी विचार करते हैं कदम आगे बढ़ने चाहिए, मोक्ष मार्ग में कदम आगे बढ़ने चाहिए। संतुष्ट नहीं, दो टाइम स्वाध्याय कर लिया और हम संतुष्ट हो गए। अरे भैया क्या कर रहे हो आप, ये तो जीवन समर्पित करने वाली चीज है। घंटा दो घंटा पढ़ने जैसी नहीं है, पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया जाए ऐसा है। ये अमूल्य निधि मिल गई है हमारे को, मतलब खजाना मिल गया है। इस खजाने को प्राप्त करके भी हम इसका अवधारण नहीं करें, ये जो खजाना हमारे को मिल गया है इसका सेवन नहीं करें, जो रत्न मिल गए हैं, जो निधियां मिल गई है इसका उपभोग नहीं करें, तो फिर कब अवसर आएगा। अन्य गतियों में तो चांस ही नहीं है। देवगति के जीवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, नारकियों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, प्रियंकियों को समझ नहीं है, और मनुष्य गति के जीवों को समझ है तो समझना चाहता नहीं है। क्या इसीलिए तो 84 के चक्कर खा रहे है। हमारे पास में समझने का अवसर तो है लेकिन समझना ही नहीं चाहते हैं। अवसर है हमारे पास में, ये मिल गया है, ये अपूर्व अवसर जो ये सामने लिखा है, ये कितने लोगों के हाथ में पड़ता है ये बताओ मेरे को। कितने लोगों के, यहाँ से बाहर निकल करके देखो जरा कितनी गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई देती है। खाली गाड़ियां दौड़ती है कि उसमें इंसान भी होते हैं? कितनी भीड़ है, कितने लोग है, कितने मनुष्य। ये तो अमेरिका है, यहाँ तो गाड़ियां ही गाड़ियां दिखती है, और हमारे वहाँ किसी व्यक्त चौराहे पर खड़े होकर के देखो तो ऐसे लगता है तो मनुष्य गति की जीव है। कहाँ खो रहे हैं अपना मनुष्य जन्म, कहाँ जा रहा है इनका जीवन। एक बार दो चार मिनट के लिए कभी कभी ऐसा विचार आता है, रेड लाइट पर जब मैं खड़ा होता हूँ गाड़ी को रोक कर, तो मुझे ऐसा विचार आता है जब मैं भीड़ को देखता हूँ तो ये तो मनुष्य गति के है, सबका मनुष्य गति जीवन ऐसे जा रहा है, भागम भाग में भीड़ भाड़ में। और देखते ही देखते क्या होता है, प्रभाव अगला जन्म आ गया। यहाँ तो विचार ही करते रहे। अभी अभी एक वाक्य पढ़ा मैंने, यहाँ बहुत सुंदर वाक्य, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। वाक्य क्या है, थोड़ा सा प्रसंग है, देखो आप एक मिनट लगेगी, मैं पूरी चर्चा को पढ़ करके सुनाता हूँ आपको। कल गोधूली तक सपने संजोते रहा, बुनता रहा, जिंदगी की बड़ी बड़ी प्लानिंग करता रहा, रात भर उन्हें गुनता रहा, एक्शन में बदल डाला, सुबह सुबह दौड़ पड़ा और सायं 5 बजे काल के गर्भ में चला गया। रेल ने लपेट लिया, वो दुनिया से चला गया, पूरी दुनिया बदल गई, चक्र घूम गया, सुइयां थम गई, मुंह खुले रह गया, आंखें भीगने लगी, चीखें निकलने लगी, कहां गया वो सब, किधर गया वो सब, कैसे हाथ में से छिन गया वो, किसे एक पल का पता है, सब चला गया, क्या गया उसके साथ, साथ गए तो सिर्फ उसके वो ही परिणाम जो उसने किए थे, बाकी सब रह गया, जिनके लिए किया वो और जो वो जो किया, जो कुछ भी किया और जिसके सब चला गया, सब छोड़ करके चला गया क्षण मात्र में। बोलो अब जीतने का अवसर नहीं है, आज वो चले गए, आज उनका स्वर्गवास हो गया, आज उनका देहांत हो गया। अरे अरे अभी तरुण सागर जी का एक वाक्य पढ़ा था हमने, एक महाराज का, वे कहते हैं कि आपको यदि अपनी तारीफ सुननी है तो अपने उठावने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में तो क्योंकि उसके पहले लोग तारीफ करते ही नहीं है, सारी दुनिया बुराई बुराई करती रहती है, और जब वो अवसर आता है कहते हैं यार आदमी तो भला था, अब चला गया। तो हम किससे अपेक्षा रखे, क्या क्या अपेक्षा रखे वो लोग? हमें दुनिया से अपेक्षा है वो हमारी तारीफ करें, हमें दुनिया से अपेक्षा है वो हमारी प्रशंसा करें, वो हमारी तारीफ नहीं करते। इनको तो हमें अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं है, इनको तो हमारी गलतियाँ ही दिखती है। तो भैया ये तो सबके साथ में ऐसा ही होता है, सब लोग, इसी का नाम मनुष्य जीवन है, इसी का नाम गति है, इसी का नाम संसार परिक्रमण है, इसी का नाम जगत के दुख है। इसीलिए तो कहते हैं या संसार में जीव दुखिया कोई नजर नहीं आता। जिनके जीवन में प्रशंसा दिखाई दे रही है, दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन परिवार वाली सुनते नहीं, एक परेशानी थोड़ी ना है। घूम फिर करके अनेक तरह की समस्याएं दिखती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है। किसी व्यक्ति के परिवार में सब अनुकूलता है तो बाहर में अनुकूलता नहीं है। किसी के बिजनेस है तो वो जॉब की इच्छा रखता है, किसी को जॉब है तो बिजनेस के बारे में विचार करता है। किसी के पास रहने को मकान नहीं है, किसी के पास में मकान है तो शांति नहीं है। तो ये सब ऐसे ही चलते हैं, इसी का नाम संसार दशा है। इसलिए आप तो अच्छेपन की भावना भावो, अच्छेपन की भावना माने दूसरे के अच्छे होने की नहीं, वो तो रोज भाता है, हे भगवान ये कब सुधरेंगे, मैं तो रोज भावना भाता हूँ, वो नहीं मैं कब सुधरूंगा, उनके सुधरने से उनका कल्याण होगा और मेरे सुधरने से मेरा कल्याण होगा। आप दूसरे का कल्याण चाह रहे हो या अपने आप का, आप क्या चाहते हो? वो दिन वो अवसर कब आएगा जब अंदर से ये विकृतियां निकल जाएगी, जब अंदर से सुधार होगा, वो दिन कब आएगा? बाहर से तो रोज नहाता हूँ, रोज तैयार होता हूँ, अच्छा दिखने की कोशिश करता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो बहुत सुंदर दिखाई देता हूँ। वो दिन कब आएगा जब बाहर के साथ साथ अंदर से भी निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ ये ग्रंथ क्या चीज है? ये ग्रंथी है अंदर में, गांठ जो बांध रखी है, ग्रंथ कहते हैं गांठ को, गांठ जो बांध ली है। ये बैर यदि एक बार बंध जाता है तो दम सद्भव तक पीछा नहीं छोड़ता। पुराण उदाहरण है, साक्षी है हमारे पास में कमठ और मरुभूति का प्रसंग, दम सद्भव तक चलता रहता है। कितने कितने भवों तक वो बैर चल रहा है, वो दुश्मनी कब तक चलती रहेगी, कब तक निभाओगे? छोड़ दो उसे, उस कलुषता को तुरंत छोड़ दो। ज्ञानियों के जीवन में कलुषता चलती नहीं है ज्यादा लंबे समय तक, इसलिए वर्ष में तीन बार पर्युषण आते हैं। क्या मतलब तीन बार क्यों आते हैं? वर्ष में तीन बार आए, एक महीने से एक से दूसरे के बीच में छह महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। छह महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे वो, और अपनी शुद्धता, अपनी निर्मलता, दस लक्षण पर्व, क्या आत्मशुद्धि का पर्व, क्षमापना, वर्ष में तीन बार, छह महीने से ज्यादा कलुषता का भाव रह गया तो अनंतानुबंधी को मिल जाता है, वो तीव्र अनंतानुबंधी कषाय हो जाती है। कहाँ लेकर के जाएंगे हम उस अनंतानुबंधी को, कौन सी जगह पर जाएगी वो? अनंत संसार का कारण बनेगी, छोड़ दे रहे हैं। संबंधों का तीक्ष्ण, संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर विचरूंगा कब? महंत पुरुष के पंथ जब, बोलो क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदिने विचरशु कब महंत पुरुष ने पंथ जो। कब ऐसा अवसर आएगा? क्या कह रहे हैं? अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, वो दिन कब आएगा? किसका इंतजार है? अच्छे दिन का इंतजार है, हम सोच रहे हैं कि वो दिन कब आएगा, अच्छे मुहूर्त का इंतजार है, कब आएगा? आ गया है। ऐसा नहीं अब इंतजार नहीं करना है अच्छे दिन का, अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छा अवसर आ गया है। इससे अच्छा अवसर और क्या आएगा बतलाओ? इससे अच्छे अवसर की कल्पना है आपको? आज जो हमारा परिवार दिखता है, शांति से हम लोग बैठे हुए हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे अच्छे अवसर की और क्या कल्पना कर सकते हैं आप? और क्या सोच सकते हैं इससे अच्छा अवसर क्या आएगा? ये अवसर मिल गया है भेद विज्ञान का, ये अवसर मिल गया है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, निज पर के कल्याण का अवसर मिल गया है, आत्महितकारी शास्त्र मिल गए हैं, ऐसे गुरु की वाणी मिल गई है, इससे अच्छा अवसर तो मुझे नहीं लगता है कि देह छूटने के बाद में मिलेगा। और कोई भरोसा नहीं है देह कब छूट जाए, अभी बात करते करते देह छूट सकती है। इंडिया से, जयपुर से आया हूँ, क्या पता वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, कोई गारंटी नहीं है इसकी, कोई व्यक्ति गारंटी नहीं ले सकता है अपने जीवन के बारे में। प्लानिंग तो मालूम कितने कितने समय की करता है। एक वाक्य पढ़ा था मैंने, अपनी इस टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट चाहता है, ये सोचता है मकान परमानेंट होना चाहिए, ये सोचता है सब जॉब परमानेंट चाहिए हमारे, लाइफ परमानेंट है कि नहीं है तो परमानेंट जॉब की बात करता है, बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो परमानेंट कई पीढ़ियों तक चलता रहे, क्या बात कर रहे हो आप, टेम्परेरी है सब, लाइफ ही टेम्परेरी दिखाई देती है, इतनी टेम्परेरी है कि आप कल की भी गारंटी नहीं ले सकते हो। वो पांडवों के साथ में घटी थी ऐसी घटना, सुनी होगी आपने, ऐसा निकल गया धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से, एक याचक मांगने के लिए आया और वे किसी काम में व्यस्त थे और उन्होंने ऐसा कह दिया कि कल आना कल दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर उनके यहाँ कोई व्यक्ति कुछ लेने के लिए आया, कुछ मांगने के लिए आया, काम में व्यस्त थे और ऐसा निकला उनके मुंह से कि कल आना लेने के लिए, मैं कर देता हूँ। और भीम गए नगर में और वहां जाकर के वो लोगों को इकट्ठा किया और घोषणा करने लग गए, बधाई हो बहुत अच्छी अच्छा काम हुआ है आज तो, सूचना दे रहा है वो वहाँ, क्या सूचना दे रहा है कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर उन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली। वो सुना युधिष्ठिर ने ये क्या कर रहा है, किसकी आवाज है, कौन नगाड़े बजा रहा है, इस तरह की क्या सूचना दी जा रही है हमारी आज्ञा के बिना, कौन है, तो मालूम चला कि भीम ये सूचना दे रहा है। अरे बुलाओ उसको, ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में आज तक बड़े बड़े योद्धा राजा महाराजा कोई काल को जीत नहीं सके, मेरी कहां सामर्थ्य है काल को जीतने की, अभी अभी तो आपने कहा था ऐसा कि कल करेंगे, इसका मतलब कल तक तो आपने अपने काल को जीत लिया है, कल तक के लिए तो आपने अपनी मृत्यु को जीत लिया है। नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं जीत सकते उसे, हम गारंटी नहीं ले सकते कि कल आएगा कि नहीं आएगा। हमने बहुतों से सुना है, हमने हर व्यक्ति इस तरह की बातें करता रहता है और कितना समय हमारे पास में। अभी आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, ये है 20-21 साल तो जिएंगे, 20-30 साल तक, इतना तो है समझ सही, कितना है टाइम आपके पास में, 20-15 साल तो अभी कहीं नहीं जाएंगे, इतना तो शरीर भी ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, तो 15-20 साल तो मैं आप है, 10-1 साल तो आराम से, कोई बात नहीं है। कितने हुई आपकी 70 के आसपास, 69 70 हुई, हाँ तो 10-15 साल तो क्या है, अभी तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा बाबूजी से पूछो आपके पास कितना टाइम है, जो और साल 2 साल के मेहमान है, ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं बताओ मेरे को। मैंने 90-90 वर्ष के व्यक्तियों से, मेरे दाऊजी की उम्र भी 90 वर्ष की है, मैं उनसे भी जब पूछता हूँ, कभी कभी घर में जब वो नाराज होते हैं अपने बेटे बहुओं पर किसी भी प्रसंग पर, तो कहते हैं मान लो भाई हमारी और साल 2 साल के मेहमान, इससे ज्यादा तो है नहीं, वो साल 2 साल कब पल 2 पल में निकल जाएंगे और अगले दिन पूरा हो जाएगा ये पता नहीं, कौन कह सकता है, मतलब कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि और मिनट 2 मिनट के मेहमान है, कम से कम भी कहेंगे तो और महीना 2 महीना, तबीयत ज्यादा खराब हो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो तब भी ये कहता है कि और महीना 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन वो महीने 2 महीने कब सेकंडों में बदल गए और कब हमारा जीवन पूरा हो गया पता नहीं, झटके से निकलता है जीवन, एकदम आयु पूरी हो जाती है, अभी झटका लगा और जीवन पूरा हो गया, क्या विचार कर रहे हैं आप, अब कौन से दिन का इंतजार है हमने दर्शन के लिए, अब कौन से दिन का इंतजार है भेद विज्ञान के लिए, कौन से दिन का इंतजार है अपनी लाइफ में अपूर्व शांति के लिए, वो अपूर्व अवसर कब आएगा, अंदर यदि तड़पन दिखाई देती है तो अपूर्व अवसर आ ही आ गया है, बदल गया हूँ अंदर से सब कुछ बदल गया, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का क्या बदलता है, परिवार वही है, घर वही है, वही संपत्ति है, वही वैभव है, सब कुछ वही तो है, तो बदला क्या है, अंदर से मान्यता बदल गई, क्षण मात्र लगता है जीवन बदलने में, इधर सम्यक दर्शन हुआ और जीवन परमानेंट बदल गया, श्रद्धा बदल गई, विश्वास बदल गया, सोचने का नजरिया बदल गया, देखने का दृष्टिकोण बदल गया, और दृष्टि बदलते ही सच में दृष्टि बदली हुई दिखाई देती है। ये तो क्या होता है, हम किसी किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं और वो धारणा जीवन भर वैसी चलती है। फिर आप जब भी उसे वैसा देखते हैं तो आपको वैसा ही दिखता है, वही चीज दिखेगी आपको। जैसे कहते हैं ना, आप यदि लाल चश्मा लगा करके देखेंगे तो आपको सारा जगत लाल लाल ही दिखाई देगा। आप पीला चश्मा लगा करके देख रहे हैं तो पूरी दुनिया आपको पीली पीली ही दिखाई दे रही है। चश्मा ही बदलना है और कुछ नहीं करना है, इतना ही काम करना है। एक राजा की गाय थी, राजा के पास में गाय थी एक, और वो गाय किसी गरीब आदमी ने खरीद ली। अब राजा के यहाँ तो रोजाना हरी भरी घास खाती थी, बहुत महंगी बहुत अच्छी हरी घास खाती थी, और उसके यहाँ तो थी नहीं, सूखी घास थी तो वो खाती नहीं थी, उसको पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उसका तो जीवन ही इसी तरह से बीता था। अब क्या करे, वो बहुत परेशान था। अब वो दुबली पतली हो रही है गाय, कुछ खाती ही नहीं है, क्या करे, क्या उपाय है कि चश्मा लगा दो, हरे रंग का, हरे रंग का चश्मा लगा दिया गाय खाने लगी। हम कह रहे हमारे कोई इनमें कमी दिखती है, इनमें दोष दिखते हैं, अब क्या करें बोलो, एक बार चश्मा बदल दो, कैसा चश्मा लगा दो, वस्तु स्वरूप का चश्मा लगा दो। वस्तु स्वरूप का चश्मा लगा तो फिर आपको वे सदोष नहीं निर्दोष दिखाई देते हैं, क्योंकि दोष वस्तु में नहीं है, दोष पर्याय में है, दोष द्रव्य में नहीं है, दोष गुणों में नहीं है, दोष तो पर्याय में है, दोष तो अवस्था में है, और जिस अवस्था में दोष था वो अवस्था परमानेंट नहीं है, वो अवस्था चले गई। अरे साहब उसने मुझे गाली दी थी, ये जिनवाणी की बातें याद नहीं होती। जब हम पूछते हैं तो लोग ये कहते हैं कि साहब याद होती नहीं है, पंडित जी क्या है, बचपन में तो बहुत याददाश्त अच्छी थी और अभी तो कोई बात याद नहीं रहती, कुछ याद ही नहीं रहती। और फिर एक दिन हमने सुना, वो पता है क्या कह रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे, अरे पंडित जी क्या क्या बताऊं मैं आपको, वो जो उन्होंने हमसे उस समय जो कही थी ना बात, वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता मैं। अभी क्या कहते थे, मुझे कुछ याद नहीं रहता। अभी क्या कह रहे थे आप, हमें कुछ याद नहीं रहता, और अब क्या कह रहे हो, उनकी बातें इतनी कठोरता, इतनी कड़वी बातें मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। अरे क्या कह रहे हो आप, ये बातें तो आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते, जो कठोर बातें हैं, जो कड़वी बातें हैं, जो अपने पास में रखने योग्य नहीं है, जो बातें आपको सुनना पसंद नहीं था, उन बातों को तो आप अपने हृदय में संजो कर रखते हो, याद रखते हो। जो सुनना पसंद नहीं था उसको तो याद किया है तुमने, और जो अच्छी बातें हैं जिनमें ये कहते हैं कि तुम भगवान हो, तुम भगवान बन सकते हो, तुम द्रव्य दृष्टि से अपने आप को देखो, तुम त्रिकाल हो, तुम चेतन हो, वस्तु स्वरूप से अपने आप को देखो, अनादि अनंत हो, ध्रुव हो, परम पारिणामिक भाव स्वरूप हो, नित्य हो, अविनाशी हो, सिद्धों के लघुनंदन हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हो, देखो जरा पर्याय से भिन्न होकर के अपने स्वभाव को, तो वो याद नहीं रहता है, क्या करे। अब जिसको अच्छी बातें याद रहती है उसकी होनहार अच्छी है, और जिसको अच्छी बातें याद नहीं रहती और खराब बातें याद रहती है उसकी होनहार बुरी है। सुधार कहाँ करना है, भूलने का उपाय क्या है, दृष्टि मत दो, रिमूव करो इसको, फिक्स होके खत्म। उनके जीवन में अच्छा अवसर आए, कुछ जो घटना घटी बुरी हुई, हमारे साथ बहुत बुरा किया इन्होंने, अरे दुनिया में कोई किसी का बुरा कर नहीं सकता, ये सच्चाई है। पूरी कर्म फिलोसफी, पूरा जैन दर्शन ये सिखाता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बुरा नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, किसी ने किसी को स्पर्श नहीं किया, कौन किसका बुरा करे बतलाओ। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख दुख देता किंचित, किंचित मात्र भी सुख दुख देने में कोई समर्थ नहीं होता, मेरे ही कर्म का उदय ऐसा है, पाप कर्म का उदय है इसलिए मुझे ऐसा सुनने को मिलता है, पाप कर्म का उदय है इसलिए अपने बच्चे अपने को सामने जवाब देते हैं, पाप कर्म का उदय है इसलिए वो सुनते नहीं है, अब मैं इसमें चिंतन करने की बात बताऊं आपको, तो ऐसा विचार करना कि तुम ऐसा मानते हो कि वे अपने बच्चे हैं और अपनी सुनते नहीं है। भाई साहब पिछले जन्म में वो तुम्हारे बाप थे, जन्म जन्मांतरों में देखो तो सही जरा, आपको पता ही नहीं है। आप ये समझ रहे हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। अरे वो पिछले जन्म में तेरा दुश्मन था जो आज बेटे के रूप में शत्रुता निभाने के लिए आया है, हो सकता है ऐसा, लेकिन अब मैं उस शत्रुता को मिटा दूंगा कि भविष्य में वो कभी भी इस तरह की शत्रुता प्रभावों में साथ में न जाए। तो पूर्व के संस्कार इस तरह के होते हैं। एक बार विचार तो करो, ये पहला जन्म है हमारा, ये हमारे संबंध पहली बार है। अरे अनंत जन्मों में अनंत बार संबंध नहीं हुए हमारे इस तरह के, अनंत बार संबंध हुए हमारे, आपसी संबंधों की बात कर रहा हूँ मैं। आप आज मेरे पिता नहीं है, पहले आप मेरी पत्नी भी रहे हैं, पहले आप मेरे पुत्र भी रहे हैं, पहले आप मेरे भाई भी रहे हैं, पहले आप मेरे दादा चाचा नाना मामा सब कुछ हो चुके हैं। ऐसे ही नहीं होता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ में बात भी करता है ना महेंद्र भाई, इसका मतलब उसके साथ में उसका ब्लड रिलेशन रहा है। सिर्फ बात भी करता है तो मैं कहता हूँ आप स्टेशन पे उतरे और उतर करके आपने टैक्सी वाले को आवाज लगाई, इतना सा मात्र जो उसके साथ में संबंध हुआ है, संपर्क हुआ है, भाषा का व्यवहार हुआ है, ये इसके बिना नहीं हो सकता कि आपका कोई ब्लड रिलेशन रहा हो। अब किसके प्रति शत्रुता होगी, सब्जी वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले, ऑटो टैक्सी है, ड्राइवर कंडक्टर, कौन कौन सर्वेंट, हमारे काम करने वाले कर्मचारी, सबके साथ में हमारे संबंध रहे हैं भाई। ब्लड रिलेशन अत्यंत निकट का संबंध रहा है, इसके बिना बोलते नहीं, इसके बिना बातचीत नहीं होती है। फिर उनके साथ में संबंध रहा है तो जो हमारे अत्यंत निकट वाले दिखाई दे रहे हैं, इनके पास में रिलेशन नहीं है। जब हम पुराणों को पढ़ते हैं, राजुल और नेमिनाथ, दस दस भाव का संबंध, कमल और मरुभूति, कितने भावों से संबंध चल रहा था, दस दस भाव से, भले शत्रुता दिखाई दे रही हो, आपस में बोलचाल किसी भी रूप में हो, लेकिन कहीं न कहीं उनका रिलेशन रहा है, सगे भाई थे दोनों। ऋषभ देव के जीवन में देखो आप, जो जो भी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, वे चार जानवर, आप सोचो कहाँ से कहाँ संबंध बैठता हुआ उनका आ रहा है। माने ऋषभ देव को आहार देने के लिए जो आया है, जो राजा श्रेणी, सॉरी राजा श्रेयांश, वो श्रेयांश वो उसकी पूर्व भाव की पत्नी, बोलो आप कहाँ कहाँ फिर पुराणों में संबंध होते होंगे या थोड़ी ना होते हैं। अरे महापुरुषों के संबंधों की चर्चा पुराणों में लिख दी जाती है, संबंध तो सबके होते हैं, रिलेशन तो सबके साथ में, और ये संबंध वर्तमान तक का नहीं है, जो वर्तमान के संबंध है ये संबंध आगे भी जाने वाले हैं महेंद्र भाई, ये रिलेशन कहीं ना कहीं आगे भी जाकर के टकराएंगे, तो आगे कहीं टकरावट ना हो इसके लिए वर्तमान में ही संबंधों को सुधार लेना बढ़िया है। जीवन सुधरे, समय सुधरे, अच्छा समय आए, अच्छा अवसर आए, ऐसा अवसर कब आ सकता है बोलो, आ गया है वो अवसर। जिनवाणी जिनको जिनके हाथ में आ गई, जिनवाणी जिनके कंठ में आ गई, हम कहते हैं महाभाग्यशाली जीव है। इसके हाथ में आने मात्र से अंदर में कर्म जड़ने लगते हैं, हाथ में आने मात्र से कर्म जड़ रहे हैं, ये हाथ में आ गए रहे, ये निगाह में आई है, ये चक्षु इंद्रिय से पढ़ने का जो अवसर हमारे को मिल गया है, नहीं मिलता है मैं कहता हूँ, आप कोशिश करके देख लो। आपकी फैमिली में भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब भाग्यशाली हैं, सब जो बहुत अच्छे से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी फैमिली में भी जो बच्चे पोते जो भी हैं फैमिली में, आप उनसे जरा पूछो, जो यहाँ नहीं है, जो लोग पढ़ते नहीं है, आप उनको कह करके देखो, उनको कहने का मतलब कुछ सुनना है, ऐसा नहीं होता है। हम बहुत कहते रहे उनको, अरे भैया इस मार्ग में लगो, अरे भैया देखो तो सही, क्या कर लो ना आप, कर लो ना आपको करना है तो, नहीं बहुत अच्छा है ये बच्चे तो कम आ रहे, आप हो जाओ दुखी, हमें हमें उपदेश मत दो, हम तो समझते हैं हमें क्या करना है, ऐसे जवाब मिलते हैं। आपको लगता है यार ये क्या है, इसकी कैसी होनहार है, इसका क्या होगा, चिंता मत करो, सबका नक्की है अपना अपना, अलग अलग गतियों से आए हैं और अलग अलग गतियों में जाना है। ये तीव्र विकल्प संकल्प विकल्प करने की जरूरत नहीं है। अपने आप के बारे में विचार करो, कब होऊंगा, कब होऊंगा मैं कब होऊंगा, वह अवसर कब आएगा जब मैं होऊंगा निर्ग्रंथ, जब मैं होऊंगा बाहर से निर्ग्रंथ, जब मैं होऊंगा अंदर से निर्ग्रंथ, वह अवसर कब आएगा। ये तीक्ष्ण संबंधों का बंधन ये छेद कर, संबंधों का बंधन ये बंधन है, संबंधों का सूक्ष्म बंधन है, मोह का बंधन है, ये राग का बंधन है, ये विभाव भावों का बंधन है। हम बंधे हैं अपने राग से, हम बच्चों से नहीं बंधे हैं, हम अपने राग से बंधे हैं। और सच कहूं जो बड़े होते हैं उनका राग नीचे की तरफ जाता है, ये अवसर्पणी काल है ना, जैसे नदी की धारा नीचे बहती है, बिल्कुल ऐसा ही है महेंद्र भाई, ये अवसर्पणी काल चल रहा है, ये नदी की धारा की तरह बहता है। ऊपर वाले व्यक्ति को नीचे वाले के प्रति अनुराग होगा, लेकिन नीचे वाले को ऊपर वाले का विकल्प भी नहीं आएगा, इस काल में ऐसा ही होना है। आप जितनी परवाह अपने बच्चों की करते हैं, आपके बच्चे उतनी आपकी उतनी ही उपेक्षा करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की उतनी ही परवाह करते हैं। समझ आ रही है बात, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप अनुभव कीजिए अपनी फैमिली में नहीं, दुनिया में जगत में जहाँ भी, आपको बिल्कुल अनुभव, हम तो अनुभव करते हैं, हमारे पिताजी माता पिता हमें जितना चाहते हैं हम उतना उनके उनका ध्यान नहीं देते, उससे ज्यादा हमें अपने बच्चे देखते हैं। घर का पूरा सिस्टम इसी प्रकार का है, सब जगह पर इसी प्रकार का होता है, अनादि काल से ऐसा ही होता आया है। ये अवसर्पणी काल रात की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। घर में जो बड़े होंगे वो ये सोचेंगे कि सब मिल करके रहें, सब आपस में एकजुट होकर के रहें, लेकिन नीचे वाले बड़ों की परवाह नहीं करते, वो अपने अपने बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं लेकिन किसके बारे में, कि अपने बच्चों के बारे में, क्या अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने बहुए, अपने पोते, और वो उनसे बात करो तो उन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं, उन्हें हमसे कुछ लेना देना नहीं, ऐसा ही स्वरूप है। ये हम बंधे हैं अपने मुंह से बंधे हैं, उसने नहीं बांध रखा है हमारे को। ये जो संबंधों का जो ये बंधन है ये बहुत तीक्ष्ण है, इसको छेद कर विचरूंगा मैं, विचरण करूंगा मैं। कहाँ विचरण करूंगे भाई, महंत पुरुष के पंथ पर, सब अवसर आएगा मैं उनके मार्ग पर चलूंगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा मैं, उन जैसा बनूंगा मैं। ये सुखी है, ये कैसे आनंद दिखाई देते हैं, वो लोग कैसे मस्त दिखाई देते हैं। ज्ञानियों का जीवन देखो, अस्थि की मस्ती में झूमते हैं, परिवार छोड़कर के भी मस्त हैं, घर बार छोड़कर के भी मस्त हैं, दूसरे दिन भोजन मिलेगा कि नहीं मस्त हैं, परवाह ही नहीं है। दूसरे दिन भोजन का जिन्हें विकल्प नहीं है, बोलो आप कैसा जीवन होता होगा। ऐसा कहते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, यदि तेरे पास में आज के भोजन की व्यवस्था है तो कल की चिंता मत कर, आज के भोजन की व्यवस्था है तो अपना पूरा समय धर्म ध्यान में व्यतीत कर। कल किसने देखा, यहाँ तो न मालूम किस किस के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, सात पीढ़ी तक का इंतजाम करना चाहता है, आगे तक का विचार करता है, उनके लिए कर जाऊं, उनके लिए कर जाऊं, उनके लिए कर जाऊं, सब दूसरों ही दूसरों के लिए करते हैं, अपने आपके लिए कोई नहीं करता है। हमारे पिताजी जीवन भर ये सोचते रहे अपने बच्चे के लिए करते हैं, हम जीवन भर ये सोचते रहे अपने बच्चे के लिए करते हैं, वो जीवन भर ये सोचता रहेगा उसके बच्चों के लिए कर दे, अरे सब अपने अपने लिए करो ना, क्यों दूसरे के लिए विचार करते हो। कब विचरूंगा मैं, विचरण करूंगा माने चलूंगा, उस मार्ग पे कब चलूंगा, उस रास्ते पर कब चलूंगा मैं, विचरचूं कब, कब विचरूंगा। महत पुरुष ने पंथ जो, जिस रास्ते पर आप चले हैं उस रास्ते पर मैं कब चलूंगा। देखिए भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, जिस रास्ते पर महावीर स्वामी चले उस रास्ते पर चलोगे तो तुम भी महावीर बन जाओगे। हम कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं, हमारे रास्ते कहाँ जाएंगे, कषायों के रास्ते किधर जाएंगे बतलाओ। ये कषायों का मार्ग, ये कषायों का रास्ता नरक ले जाने वाला है, अधोगति में ले जाने वाला है। भले ही आप दूसरे को कितना भी गाली दो, मैं कहूँ भले ही बेटे को नालायक नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, ये मेरी कशा है, मुझे नरक में भेज रही है। वो तो जाएगा या नहीं जाएगा वो तो उसके परिणामों पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे परिणामों से मेरी अधोगति की तैयारी हो रही है। रास्ता कौन सा है, चुनना पड़ेगा हमारे को, ये मार्ग संसार का मार्ग कि मोक्ष का मार्ग, कौन सा रास्ता चाहिए आपको। मार्ग एक ही है, दिशा अलग अलग है, दो मार्ग नहीं है अलग अलग। एक मार्ग संसार मार्ग होगा, एक मार्ग मोक्ष मार्ग होगा, ऐसे दो मार्ग नहीं है। मार्ग एक ही है, एक की दिशा नीचे है और एक की दिशा ऊपर है। हम बीच में खड़े हैं मनुष्य गति वाले। अभी वर्तमान में हमारा मुख नीचे दिशा की ओर है, तो नीचे जाने की तैयारी हो रही है। हम कहते हैं बस दिशा बदल लो, फिर कदम कितना भी धीरे धीरे चलना, मंजिल नजदीक होगी। मंजिल नजदीक होगी, अवश्य नजदीक होगी, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, अंदर में भावना सही होनी चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है। दादा हमेशा एक बात कहते हैं, मुझे अच्छी लगती है बात उनकी। वो ये कहते हैं अपनी फैमिली के बारे में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपस में भी जब कभी झगड़ा हो, मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हुआ तो वो ये कहते हैं, बेटे के साथ झगड़ा हुआ, पिताजी के साथ झगड़ा हुआ, भाई के साथ झगड़ा हुआ, वो ये कहते हैं आप एक बात का विचार करना, आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, बस वो सोच लो। आप क्या चाहते हो। यदि आपका फाइनल डेस्टिनेशन ये है शांति से रहें, सुखी होकर के रहें, प्रसन्न रहें, तो उसके लिए आपके कदम बढ़ने चाहिए। और आप जिस तरफ कदम बढ़ा रहे हो, आप जिस दिशा में प्रयास कर रहे हो, आप सोच लीजिए आप किस दिशा में जाना चाह रहे हो। यदि आप पत्नी के साथ में संबंध तोड़ना चाहते हैं, तो आप उन बातों को हाईलाइट कीजिए जो बातों में आपस में विचार नहीं मिलते हो। और यदि आप संबंध नहीं तोड़ना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो फिर उन बातों को हाईलाइट कीजिए अच्छी बातें। देखिए संसार दशा में रहते हुए कोई परिपूर्ण नहीं है, कोई परिपूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति में कमियां हैं। आज मेरे में 1000 कमियां हैं, मैं जानता हूं और मैं सुनता भी हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि मैं सुधार करूँ अपने आप में। कभी नहीं भी हो पाता है तो मन में भावना ये रहती है कि यार कभी तो ऐसा करूँगा, यार कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे करेंगे। लेकिन अपने आप को बदलने की भावना, इतने ऐसे महापुरुष होकर के अपने आप को बदलने की भावना भाते हैं, हम नहीं बदल सकते। देखो ये कह रहे हैं कि मैं अपूर्ण हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, ये कह रहे हैं कि मुझ में सुधार की जरूरत है, और मैं ये कहता हूँ मैं तो समझता हूँ, मुझे सब आता है। अब बोलो आप, ज्ञानी पुरुष ये कह रहे हैं कि सुधार की जरूरत है इनको, और मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। अब क्या करें, उसके मार्ग पर चलना है। वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं, मैं उसके ऊपर कब विचरण करूंगा, मैं उसके ऊपर कब चलूंगा। उनके बताए हुए मार्ग पर, जिस मार्ग पर वो चले हैं, जिस पंथ चले जनराज, बस वही पंथ आचरणा। जिस पंथ पर जनराज चले हैं, जिस पंथ पर मुनिराज चले हैं, जिस पंथ के ऊपर साधक जीव चल रहे हैं, हमें भी उसी मार्ग पर चलना है। विचरूंगा कब, महंत पुरुष के पंथ जब। कैसे होगा ये सब, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कहा उदासीन वृत्ति हो सब प्रभाव से, सब प्रभाव है उदासीन वृत्ति हो, अपनी कषायों से उदासीनता हो, औरों की कषायों से उदासीनता हो, अत्यंत उदासीनता। माने जब मैं अपने बारे में कभी अपशब्द सुनता हूँ किसी के मुख से, तो उसे सुनकर के मुझे क्रोध भाव नहीं आता, उदासीन भाव आता है। मैं विचार करता हूँ कैसे कर्म बांध रहे हैं, ये कैसे कर्म बांध रहे हैं, और मेरे कैसे कर्म का उदय आया है, बस ये विचार करता हूँ। मैं जीता हूँ जीवन तत्व ज्ञान की शरण में, जनवाणी की शरण में, इसकी छत्र छाया में रहेंगे, क्योंकि ये माँ है ना, और माँ की शरण में जो रहता हो उसे कौन तकलीफ हो सकती है। जिसके सर पर माँ का साया हो, उसे कौन संकटों में डाल सकता है, उसे क्या परेशानी हो सकती है। फिर जिनवाणी माँ है, हर जगह पर सुरक्षा प्रदान करती है, हर जगह पर बचाती है मुझे, कषायों से बचा रही है मुझे, नरक में जाने से बचा रही है, रिवाव भाव होने से बचा रही है, परमे एकत्व बुद्धि से बचा रही है, मिथ्यात्म से बचाने की चेष्टा कर रही है ये जिनवाणी माँ। कब ऐसा अवसर आएगा? उदासीन, अत्यंत उदासीन। पाप का उदय आता है, सबके जीवन में आता है, ज्ञानियों के जीवन में भी आता है। किसके जीवन में नहीं आया पाप कर्म का उदय? पार्श्वनाथ जैसों के जीवन में पाप का उदय दिखाई देता है, महावीर के जीवन में पाप का उदय दिखाई देता है, ऋषभ देव के जीवन में पाप का उदय दिखाई देता है। पाप के उदय से कौन अछूता रह गया है? आता है पाप कर्म का उदय, एक फेस आता है, आएगा। पूर्व में किया हुआ पाप कर्म है, उदय में आएगा। लेकिन उदय में यदि उदासीन वृत्ति है, ये समझदारी का काम है। आप उदय से प्रभावित हो रहे हैं, ये अपनी लाइफ वर्तमान भी खराब कर रहे हैं, फ्यूचर भी खराब कर रहे हैं। जब उदासीन वृत्ति हो, किससे? सब प्रभाव से। प्रभाव क्या क्या है थोड़ा डिटेल कर लो, प्रभाव की, प्रभाव के अंदर क्या क्या बातें लेना है चिंतन करने के लिए। सब पंक्तियाँ गुनगुनाते रहो, बोलते रहो, चिंतन करते रहो, विचार करते रहो। कल शाम को भी प्रवचन में मैंने बात कही थी, चिंतन करो वही चेतन की खुराक है। चिंतन करो, परिस्थितियों को देख करके उनके बारे में चिंतन करो, एनालिसिस करने की कोशिश करो, ये परिस्थिति क्यों बनी है, कि ये परिस्थिति इसलिए बनी कि उसने हमें गाली दी, ये परिस्थिति इसलिए बनी कि उसने मुझे बुरा कह दिया, इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया। कभी आप ऐसा पाएंगे कि उसने मुझे जो अपशब्द कहा है, कि मैंने ऐसा किया था इसलिए कहा है, वहां भी अटकना नहीं है, और गहराई से चिंतन करो तो आप पाएंगे कि पूर्व में हमने कभी पूर्व भाव में ऐसा उनसे कहा होगा। और विचार करेंगे तो आप पाएंगे हमारे ऐसे पाप कर्म का उदय है, और वो पाप किसी और का नहीं है, वो पाप पूर्व में हमारे ही द्वारा किया गया है। कभी कभी जब मैं सामने जवाब सुनता हूँ अपने से छोटों से, क्या एकदम स्तब्ध रह जाता हूँ, विचार मग्न हो जाता हूँ कि वो अपना ही किया हुआ है भाई, किसको दोष दे रहे, किसकी गलती बताएं अपन, किसी की गलती नहीं है दुनिया में, किसी की गलती नहीं होती, अपनी गलती होती है, और अपनी गलती सुधार करके हम अपना ही कल्याण कर सकते हैं पूरा। वो कल जैसे कि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, अपनी गलती को अपने को सुधारना है, अपने को मुक्ति की प्राप्ति करनी है बस। उदासीन हो किससे? सौ प्रभाव से। अत्यंत उदासीनता है, मुंह लटकाने का काम नहीं है। देखना यहाँ जो उदासीन वृत्ति की जो बात कही है, ये उदासीन होने का मतलब, इसमें उदासीन ही है गुजराती में, उदासीन ने वृत्ति करी, सर्व भाव से उदासीन ने वृत्ति, सब भावों से उदासीन वृत्ति। उदासीन मतलब ये उदासीन मतलब समझता है उदास, लगता है ये उदास बैठने को समझता है, ये उदास बैठने की बात नहीं है यहाँ, कितना सहज रहने की बात है। अप्रभावित रहने को उदासीन कहते हैं, अप्रभावित रहे, अलिप्त रहे, उससे भिन्न रहे, इसका नाम उदासीनता है। कर्म के उदय में उदासीनता, प्रतिकूलताओं में उदासीनता, परिस्थितियों से प्रभावित बिल्कुल नहीं होता हूँ मैं, परिस्थितियाँ मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। अरे अनुकूलताओं में जो प्रभावित नहीं होते उन्हें प्रतिकूलताएं भी दुखी नहीं करती, इसका नाम उदासीनता। सब जगत से, सब प्रभावों से उदासीन, अपने भावों से उदासीन, अपने चिंतन से उदासीन, दूसरे के भावों से उदासीन, दूसरे के भावों को देख करके उदासीन, ये प्रभावों से उदासीन। तो फिर करेंगे क्या बदलाव? यह तन केवल संयम हेतु हो ये जब संयम, बहुत तरह का होता है संयम, बारह प्रकार के संयमों की चर्चा तो शास्त्रों में की है, छह प्रकार का इंद्रिय संयम और छह प्रकार का प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम में जो पांच इंद्रिय और मन के संयम की बात कही गई है, इनके अलावा भाषा पर संयम, वचनों पर संयम, क्रियाओं पर संयम, नियंत्रण अपने आप पर, ये संयम नहीं रहता। हमारी भाषा, हमारी वाणी जब हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो संयम खो देती है, सही क्या? मर्यादा तोड़ दी यदि मान लीजिए, तो फिर सब खत्म हो गया, समझ लीजिए। भाषा ने जहाँ मर्यादा तोड़ ली है, वचनों ने जहाँ मर्यादा तोड़ ली है, फिर विनाश अवश्य भावी है। ये जीव 2 वर्ष की उम्र में बोलना सीख जाता है, 2 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना, कब बोलना और कैसे बोलना, ये सीखने में इसको पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलना तो आ गया 2 साल की उम्र से, कब बोलना, कैसे बोलना, किससे बोलना, किन शब्दों में बात करना, पूरी जिंदगी लग जाती है, ये सीख नहीं पाता है। और वो जिसने सीख लिया, उसका जीवन यहीं बैठे बैठे स्वर्ग हो गया, यहीं बैठे बैठे स्वर्ग हो गया। ये स्वर्ग बना रहे हैं यहाँ, ये संयम की बात कर रहे हैं, ये भाषा पर संयम की बात कर रहे हैं, वचनों पर संयम की बात कर रहे हैं। रामायण का पाठ होते होते कब महाभारत शुरू हो जाए हम नहीं कह सकते। एक शब्द कुछ का कुछ कह दो, पाठ चल रहा था रामायण का और शुरू हो गई महाभारत, समझ गए ना? एक ही तो वाक्य था जो द्रौपदी के मुख से निकला था, वो ठोकर लग गई उसको, दुर्योधन को, इतना सा वाक्य निकल गया, अंधों के पुत्र अंधे, इतना सा वाक्य और पूरी की पूरी महाभारत खड़ी हुई, पूरा युद्ध। वचनों की बहुत अहमियत है, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। यह तन जो मिला है, ये जो वाणी मिली है, ये जो मन मिल गया है, केवल संयम के लिए। कंट्रोल करो इस पर, शरीर पे कंट्रोल करो, वाणी पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करो। इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करते हम लोग, अनाप शनाप खाते हैं, कुछ भी जो आ गया, एक कूड़ा पात्र है, कचरा दान है, कुछ भी डाले जा रहे हैं पेट में। ये तन पर संयम, भोगों पर संयम, वचनों पर संयम और मन पर संयम, ये साधना का मार्ग है। जब इन 3 चीजों पर संयम होता है तो साधना शुरू होती है। तो मन वचन का है, नमः हूँ त्रियोग संहारी के, तीनों योगों को संभालना, यही तो कह रहे हैं यहाँ पर, सब कुछ तो आ गया है यहाँ। यह तन केवल संयम हेतु होए जब, ये तन, ये शरीर, वाणी और मन, ये सब संयम के हेतु जब होगा, तब पर भावों से उदासीन वृत्ति होगी, किसी हेतु से अन्य वस्तु चाहू नहीं, मैं नहीं चाहता किसी से अन्य वस्तु कुछ भी, तन में किंचित भी मूर्छा नहीं हुए जब। देखो मूर्छा क्या चीज है, मूर्छा माने ममत्व परिणाम। अमृतचंद्र आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, मूर्छा किसे कहते हैं, तो कहा मूर्छा तू ममत्व परिणाम है। तन में किंचित भी मूर्छा नहीं हुए जब, जब तन में किंचित मात्र भी मूर्छा नहीं होगी, तब किसी से अन्य वस्तु चाहूं नहीं। जब किसी से ममत्व ही नहीं है तो किससे क्या चाहूंगा, जब किसी से आपको कोई अपेक्षा ही नहीं है तो उपेक्षा का शिकार कैसे होगा। अपेक्षा और उपेक्षा साथ में चलती है, अपेक्षा रखोगे तो उपेक्षा मिलेगी, आप अपेक्षा मत रखो आपको उपेक्षा भी नहीं मिलेगी, ये सीखा है मैंने। ये शिक्षा लेते हैं एक दूसरे को देख करके, इस प्रकार की शिक्षा मिलती है लोगों को देख करके, ज्ञानियों के जीवन को देख करके। हम सबसे उपेक्षा, उदासीन वृत्ति हो, समस्त प्रभावों से उदासीनता हो, केवल संयम हो, संयम के लिए हमारे को ये तन मिला है। ये तन क्यों मिला है, ये तन साधना के लिए मिला है, ये तन खोने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं मिला हमारे को, ये बहुत दुर्लभता से मिला भैया। न मालूम कितने जन्मों तक, कितने जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए होंगे कि हमारे को ऐसी परिस्थिति मिली है। पिछले भाव में कोई ऐसा मंद कषाय का परिणाम किया था जिससे मनुष्य जन्म की प्राप्ति की है, नहीं संभले अब तो क्या होगा, फिर काल अनंत, अरे दुख का घन छाएगा, अनंत काल के लिए दुख 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 और कुछ नहीं। अनंत काल हो गया है संसार में परिभ्रमण करते हुए, दुख उठाते हुए, तकलीफ पाते हुए। अब समझो, थोड़ा सा संभालो अपने आप को, अपने मन को संभालो, अपनी भाषा को संभालो, अपने तन को संभालो, सबसे उदासीन हो जाओ। उदासीन वृत्ति हो सब प्रभाव से, यह तन केवल और केवल संयम के हेतु से मिला है हमारे को। किसी भी हेतु से मैं अन्य वस्तु को नहीं चाहता, मैंने पर की चाहना नहीं है, शरीर के स्वस्थ पने की भी मैं कल्पना नहीं करता। यह तन में किंचित भी मूर्छा नहीं हुए जब दर्शन मोह का अभाव हो जाता है। फिर आगे दर्शन मोह और चरित्र मोह के अभाव की चर्चा की है, अभी तो मिथ्यात्म की अवस्था बतलाई। यहाँ तक जो चर्चा की है ये तो सिर्फ भावनात्मक चर्चा की है, अभी कुछ बदला नहीं है, अभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ तक तो सिर्फ हमने भावना भाई है, और कहते हैं भावना भवनाशिनी, भावना भव का नाश कर देती है। भावना भाव, अच्छी भावना भाव, अच्छे विचार करो। आप जैसा विचार करते हैं बस वैसे बन जाते हैं, बस वैसा ही प्राप्त करते हैं, बस वैसा ही हो जाता है। ये बहुत बड़ी ताकत है महेंद्र भाई, अपने परिणामों में बहुत बड़ी ताकत है। हमने अपनी उस पावर को नहीं पहचाना। मेरे पास इतनी बड़ी पावर है कि मैं चाहूँ तो सृष्टि बदल दूँ। कि कैसे बदल सकते हो? आप अपनी भावना से, आप अपने चिंतन से, आप अपने विचारों से, उस दृढ़ता से करो एक बार कोशिश। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा विचार करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, वैसी ही परिस्थितियां दिखने लग जाती है। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छे बन जाते हैं, अच्छी परिस्थितियां बन जाती है। आप खराब सोचते हैं, खराब बन जाते हैं, खराब परिस्थितियां बन जाती है। हम सोचते हैं मुक्ति के बारे में, हम सोचते हैं मोक्ष मार्ग के बारे में, हम चिंतन करते हैं अपने आत्म कल्याण के बारे में, हम चिंतन करते हैं वो अवसर कब आएगा। यदि ये चिंतन हमारे हृदय में चल रहा है तो निश्चित तौर पर एक प्रसंग ऐसा आएगा कि उस महंत पुरुष के जिधर चरण पड़े हैं हमारे चरण भी उसी दिशा में बढ़ने लग जाएंगे। अपूर्व अवसर ऐसा अब तो आएगा, अब तो आएगा, अब तो आएगा, अवश्य आएगा, आ गया है। इसलिए ऐसा विचार करें, हम अपने जीवन को सफल सार्थक करें, इसी भावना से मैं विराम देता हूँ। सोचा तो था कि 5 चंद हो जाएं, कल ज्यादा ले लेंगे थोड़ा।
स्वरूप समझा बिना काम्यो दुख अनंत, समझा यो से पदनम श्री सदगुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखगा ये Thank you.